ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, कहें पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी दुनिया जिसकी इस वक्त 700 करोड़ आबादी है, उसमें से स्वयं भगवान ने हमको अपना बना लिया। कितना बड़ा सौभाग्य, स्वयं ये रियलिटी है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं, स्वयं भगवान ने हमको चुन लिया, ढूंढ लिया हमको। इतने कांटो रूपी, बाबा कहते हैं कांटो रूपी दुनिया जंगल है, उसमें से हमको चुन करके फूल बना दिया। बहुत बड़ा सौभाग्य है। केवल चुना ही नहीं, देखो कोई चीज आप चुन के लाते हैं, बाजार जाते हैं चुन के लाते हैं, तो क्या करते हैं उसको? ऐसे नहीं कि फ्रिज में पड़ी रहे, उसको इस्तेमाल करते हैं ना, उसका कुछ एक दिन दो दिन के बाद इस्तेमाल तो करते ही। इसी प्रकार से बाबा ने भी हमको चुना, सिलेक्शन किया। देखो अभी गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, तो बाबा ने सिलेक्शन किया हमको। फिर एक और सौभाग्य है कि हमको किसी कार्य में भी लगा दिया। हम सभी बाबा के देखो बच्चे मददगार हैं, देखो वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड, रियलिटी कि हम भगवान के मददगार हैं, शिव बाबा के मददगार हैं, अपने बाबा के मददगार हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब देखो एक कहावत है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, ये कहते ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। हम क्या है, हम तो परमात्मा के मददगार, खुदा की बुझाएं हैं, परमात्मा की बुझाएं हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। बाबा क्या, तुम तो बेफिक्र बादशाह हो, तो हम तो अब वो हमारी कितनी मदद करेगा। खुदा उनकी भी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, हम तो खुदा ही खिदमतगार है। तो बताइए कितना ध्यान होगा हम पर बाबा का, बताओ। कहता ना एक निकला है, पोस्टर भी निकला है, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं, एक है आपने देखा होगा। तो बाबा कहता है चिंता की बात नहीं, निश्चिंत बन जाओ, सब मेरे पर छोड़ दो। तो हम भी ऐसे आज से 55 वर्ष हो गए, बहुत जमाना बीत गया। 20 साल की एज थी, छोटी उम्र थी, पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बाबा ने ढूंढ लिया हमको। हम पढ़ते थे, हमें ये ज्ञान मिला, किसी भाई ने ज्ञान दिया, उसने हमारे पास एक गीता की पुस्तक थी छोटी सी, जो हमें मिली थी पुरस्कार में, उसने देखी, वो ज्ञान सुन के आया था अम्बाला से, उन्होंने कहा ये तो जरूर कोई धार्मिक आदमी है, इसका पुस्तक है। बाबा कहते हैं ज्ञान भी उसको दो जो थोड़ा समझने वाला भी हो, क्योंकि हमने बचपन में बहुत भक्ति की थी। मुझे याद आया हमारे लोकित फादर, उनको भगत थे, और वो हर रात्रि को घर घर में जाके कथा सुनाते थे, ये महाभारत, ये रामायण, ये भागवत, विशेष जो है ना भागवत, हमारे सनातन धर्म का शास्त्र है, जिसमें बहुत श्री कृष्ण के चरित्र है, कहानियां किस्से बहुत है। तो हम भी साथ साथ 5 साल की 6 साल की उम्र में जाते थे, तो हम खूब सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो हमें वो सारे संस्कार जो थे, भक्ति के संस्कार तो बहुत थे, आरती करना कुछ भी करना ऐसे था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई, और धर्म के जो क्वेश्चन हमारे थे वो नहीं मिलता था उसका आंसर, या उसकी रिप्लाई नहीं होती ठीक, तो धीरे धीरे भक्ति से भी आस्था टूटती गई। नास्तिक तो नहीं थे, परंतु आस्तिक भी नहीं थे, ऐसे थे भी, हाँ है भगवान तो नहीं आया, क्या करना हमको, कर्म है ना गीता में, कर्म योग, कर्म करना ही वास्तव में योग है। ऐसे पढ़ रहे थे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसने हमें ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, पहला लेसन। हम क्या, हम आत्मा कैसे है, दिखाओ, हमें दिखती तो नहीं आत्मा, ये तो शरीर है, मशीनरी है, उसमें कोई पुर्जा खराब हो जाएगा तो वो फेल हो जाएगा, वो मशीनरी खत्म हो जाएगी। इसमें आत्मा कहां से आई। काफी दिन तक चर्चा होती रही। आंतरिक हम समझते थे कि भक्ति तो की हुई थी, आत्मा तो है कोई चीज, अंदर आत्मा है, आत्मा जिसके निकलने के बाद ये मिट्टी हो जाता है, जला देते हैं, ये मालूम था। लेकिन फिर भी कई दिन तक डिस्कशन करते रहे। आखिर उसने एक दिन कहा उसने कि भाई आप मान जाओ कि आप आत्मा है। तो मैं मानता तो था ही उस दिन का। हाँ भाई, हमारे ओम प्रकाश भाई इंजीनियर थे, वो पढ़ते थे हमारे साथ, जो भी उसके मध्य प्रदेश के डायरेक्टर या है जोन इंचार्ज है, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने हाँ आज हम मानते हैं कि हम आत्मा हैं, बस यही कहना था कि मैं आत्मा हूं, अनुभूति होनी शुरू होगी। समय उसी एक बात को मानने से और थोड़ा सा अभ्यास करने से सब कुछ बदलने लगा। दृष्टि, वृत्ति, कृति, खान पान इतनी जल्दी चेंज हुआ, विद इन 2-3 डेज, 2-3 दिन के अंदर। उसको भी बिलीफ नहीं हो रहा था कि ये ऐसा हो सकता है इतनी जल्दी। बाबा बहुत टचिंग कर रहे थे, जैसे अभी शिव बाबा का ज्ञान भी नहीं सुना, यही आत्मा है। वो सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास होना शुरू हो गया और लिखना शुरू कर दिया, अलमीरा पर, दीवारों पे, डायरी में, जहां भी जो मिले, आई एम सोल नॉट बॉडी, आई एम सोल। बहुत लिखना शुरू किया, अभ्यास शुरू कर दिया। क्योंकि भले हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे, सब कुछ था, खेलना कूदना खाना पीना पढ़ना सब कुछ था, माँ बाप चाहते थे इंजीनियर बने। उस वक्त 55 साल पहले तो बहुत बड़ी बात थी, इंजीनियरिंग की बात थी। अब तो बहुत इंजीनियर कॉलेज है, उस वक्त 2-4 कॉलेज सारे इंडिया में थे। तो लेकिन फिर भी कुछ जीवन में खाली था, समथिंग मिसिंग, कुछ चाहिए। सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली था, मिसिंग था। तो वो आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक ज्ञान ने वो भरा, तो सब कुछ बदल गया। हमने कहा भाई, उसे पूछा, ये तो बहुत वंडरफुल चीजें हैं, बहुत बड़ा इसका अनुभव हो रहा है हमको। तो उसने, मैंने कहा मुझे बताओ और तुम आपके पास क्या ज्ञान है। 2-3 दिन में सारा ज्ञान सुन लिया और ऐसा लगा ज्ञान, हम किसी के प्रेम प्यार से, किसी की दादी को, किसी के नहीं मिले रहे, दादी दीदी किसे नहीं मिले, बाबा मामा को देखा नहीं। इतना वंडरफुल ज्ञान लगा, इतना अच्छा लगा, इतना मन को संतुष्ट करने वाला, बुद्धि को भरपूर करने वाला लगा, बहुत सुंदर लगा। ये आत्मा का परमात्मा ही शिव है, क्या कमाल की बात थी। हम रोज परमात्मा परमात्मा बोले, हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। शिवलिंग देखते थे हम वहां जाके, मंदिरों में देखते थे, लेकिन यही परमात्मा की यादगार है, यही परमात्मा का स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम। उस वक्त उन दिनों में ज्योतिर्लिंगम कहते थे, अभी ज्योति स्वरूप की बात, ज्योति बिंदु की बात नहीं निकली, बाबा भी ज्योतिर्लिंगम कहते। यही परमात्मा है, ये सोमनाथ अमरनाथ, यही परमात्मा का स्वरूप है। ये बहुत बड़ी बात लगी, यानी एग्जैक्ट पता लगा परमात्मा है कौन, हमारा घर कहाँ है, कमाल है। किसी ने नहीं कहा, इस चक्कर में पड़े, किसी ने बताया नहीं हमारा घर कहाँ है। सृष्टि चक्कर 5,000 वर्ष का है, ये बहुत सुंदर लगा। हम पहले सोचते थे बचपन में जब पढ़ते थे, सृष्टि किसने बनाई, कब खत्म होगी, फिर क्या होगा, कुछ मालूम तो था नहीं, दुनिया ने बताती नहीं थी। हम सोचते सृष्टि शायद लीनियर है, चलते चलो पीछे, कभी तो शुरू हुई होगी, फिर कब खत्म होगी। तो एग्जैक्ट जो ज्ञान मिला, सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का है, और गीता में था, हमने पढ़ी हुई थी कि अर्जुन हम पहले भी थे, अब भी हम फिर भी मिलते रहेंगे, ये गीता में है। तो ये हूबहू रिपीट होती है, इस बात से भी निश्चय हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना अच्छा लगा ज्ञान की, बिल्कुल सोचा ये जो इतना ऊंचा ज्ञान है कोई इंसान नहीं दे सकता, स्वयं कोई और ही ऊंचा ज्ञान सागर ही दे सकता है। और भी बातें सुनी सारी, राम कौन है, रावण कौन है, कृष्ण ने, तो दुनिया कहती है सुख दुख चला आता है। बाबा ने कहा नहीं, जब सुख है तो दुख नहीं, दुख है तो सुख नहीं, काम मिष्टा सम्मान है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहता ना, भगवान ने स्वर्ग रचा तो क्या, अगर ये दुनिया भी भगवान ने थोड़ा रची हुई है। तो सब बातें इतनी अच्छी लगी, इतनी मन को भाई, बस हमने कहा ये तो बहुत ऊंची बात है। तो हमें, मैंने कहा बताइए आपको ज्ञान कहाँ से मिला, उससे पूछा भाई से। उसने कहा अभी नया नया 4-5-7 दिन हुए हैं, तो इसको क्या बताऊं कि भगवान ज्ञान दे रहा है। उन्होंने बताया कि ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में दिया और वो दिल्ली में आए हुए हैं। हमने कहा तो मिलना चाहिए, तो फर्स्ट मीटिंग कैसे हम बताते हैं आपको, हम चल पड़े। तो कैपिटल था दिल्ली इंडिया का, अभी भी है, जो वहां गए रात्रि को पहुंचे, ऐसे लगा हमें कोई खींच रहा है, चुंबक जो है आकर्षण कर रहा है हमें, हम आत्मा रूपी सुई को खींच रहा है। ये पहुंचे सुबह सुबह, बाबा मम्मा से मिलना हुआ, उन दिनों में तो थोड़े होते थे, बाबा मम्मा संदली पर बैठे थे, सुबह मिलने का मौका मिला, उनको देखते ही ऐसा आकर्षण हुआ, बाबा इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, चमकता हुआ ललाट, ऐसे यानी पर्सनैलिटी को देखकर, मम्मा को देख करके बस यही सोचा कि यही हमारे अपने ही माता पिता है। बहुत गोदी में गए उन दोनों में, बाबा मम्मा अपने बच्चों को गोदी देते थे, गोद में लेते, थपथपाते थे, प्यार करते थे, मुख में टोली खिलाते थे। अब तो हम लेते हैं हाथ में लिया हुआ, परंतु उन दोनों में तो ऐसा, जब हम बच्चे बाबा से मिलते थे तो गोदी में जाते, तो ऐसे जैसे शुद्ध बुद्ध भूल गए। और वहां पर, और जब उसके बाद बाबा ने पूछा, उनको पता था, मैं क्या मालूम नहीं कैसे पता था, बाबा के पहला वरदान था, आप शायद सुन के आश्चर्य कहेंगे, बच्चे उन दोनों में ऐसा लगता था कि विनाश हुआ कि हुआ, जैसे अभी लगता ना सृष्टि ऐसी गिरावट की तरफ जा रही है, प्रकृति खिलाफ हो रही है, तभी से तब भी ऐसा लगता था कि विनाश हुआ कि हुआ। वो 1957 और 1857 सौ साल होने वाले थे, मालूम पड़ता था कि कभी कभी भी विनाश हो सकता है, जब से हमें ज्ञान सुना। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हो ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं है, ये बाबा के पहले पहले मेरे पास प्रतिमावक। मैंने कहा, बात तो वहां भगवान आया है और सृष्टि को बदलना है, दुनिया विनाश को हो जाएगी, हमने कहा क्या पता 3-4 साल में ही होने वाली हो। तो मैंने, बाबा आप कहते तो क्या किया जाए, कहा बच्चे इसी ईश्वरी धंधे में लग जाओ, धंधे में लग जाओ, ऐसा बोलो। तो हम आए, हमने फिर क्या किया जाए, बाबा ने ऐसा कहा तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, यानी इंग्लिश में लेटर लिखा, तो हमें इंग्लिश में ही जवाब आया। बाबा ने इंग्लिश में लेटर लिखा, हमने लिखा तो बाबा ने बड़ा सजा करके, बड़े हाशिया लगा करके, उन दोनों में टाइप होता नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं थे, हाथ से लेकर भेजा। तो बाबा को मैंने लिखा, मैं आपको बताता हूँ, बाबा ने क्या जवाब दिया वही बताता हूँ आपको। मैं लिखा, बाबा आई इंग्लिश में लिखा, भाई आई डोंट वांट टू डिजाइन बिल्डिंग्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, बट आई वांट टू बी वन ऑफ द स्टोन्स ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग यू आर इरेक्टिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। बाबा आप जो नई दुनिया की एक बहुत बड़ी महल बना रहे हैं, उसमें एक मैं एक उसमें से एक छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूँ। वो मैंने बाबा का, बाबा मैं आई डोंट वांट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे लीडिंग टू परम धाम एंड देन टू गोल्डन एज। फिर लिखा बाबा आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वांट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए किंग एंड क्वीन मशीनरी विच यू आर डिजाइन विच यू आर इन्वेंटेड। यानी आपने जो एक नए विश्व के बनाने के लिए किंग और क्वीन में, बाबा कहते हैं ना, मशीनरी है, उसमें पुर्जा बनना चाहता हूं। इस प्रकार से लिखा बाबा ने इंग्लिश में, कहा बच्चे बी पेशेंट, सबर कीजिए, और अपने लौकिक माता, अपने फैमिली मेंबर्स को भी, और जो इंजीनियर्स हैं आपके को इंजीनियर्स हैं जो साथ पढ़ते हैं, उनको ये ज्ञान दीजिए। अब बाबा के डायरेक्शन आगे, हम फिर अपने लौकिक फैमिली मेंबर्स को भी, हम ये शुरू से हमारी एक बात रही, जो बाबा लिखते थे, जो बाबा कहते थे, हम उसको करने की उसी प्रकार से कोशिश करते थे। तो बाबा ने ये कहा तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम क्या करते थे, जो हमारे इंजीनियर्स थे उनको ज्ञान देना शुरू किया, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और अपने हॉस्टल में रहते थे, वहां पर एक हॉस्टल में कमरा ले, अपने कमरे में बाबा की को बल्ब लगा करके और ग्रामोफोन लेकर के क्लास शुरू कर दी। उन दोनों में ये टेप वेप नहीं थे, ग्रामोफोन चाबी वाले होते थे, वो थाली होती थी सुई वाली। तो हम योग लगाते थे, मैं और वो दूसरा भाई था, और आसपास के एक दो और स्टूडेंट आ गए, तो छोटी सी हॉस्टल में ही क्लास हमारी शुरू हो गई। तो लोगों ने इतराज किया, वार्डन ने इतराज किया, आप क्या करते हैं। फिर हमने छोड़ करके बाहर कमरा लिया, जगह ली, तो एक छोटा सा जो गीता पाठशाला कहो या सेवा केंद्र छोटा सा हमने चालू कर दिया। इस प्रकार से वहां चालू किया, कई स्टूडेंट्स हमारे पास इंजीनियर्स आने लगे, अपने प्रोफेसर को ज्ञान दिया। हम उन दिनों में एक त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, आप जानते हैं त्रिमूर्ति, अभी यहाँ तो ज्ञानम रहता है ना, अभी तो उन दिनों में त्रिमूर्ति मैगजीन थी। हम वो त्रिमूर्ति मैगजीन लेकर के आती थी दिल्ली से, एक बस में चढ़ जाते थे, सभी को वो त्रिमूर्ति मैगजीन बांट देते थे। मैं कहा पढ़ो, उसमें आप देखते हैं अभी तो ज्ञान की धारणा की योग की बातें हैं ना और अनुभव की बातें हैं, उन दोनों में ये नहीं होता था। आप एक पेज खोलेंगे उसमें होगा परमात्मा सर्वव्यापिनी, दूसरा आर्टिकल होगा पति पावनी गंगा नहीं, तीसरा खोलेंगे तो होगा आत्मा 84 लाख दुनिया नहीं भुगत थी, चौथा होगा गीता का भगवान श्री कृष्ण ने, इसी प्रकार की बातें खूब लिखी होती थी, क्लियर कट होता था, कोई उसमें छुपाने की बात नहीं थी। तो हम जब उनको देते थे वो फिर हम आगे उतर करके उनसे वापस लेते थे, बताओ क्या पढ़ा। तो कई स्टूडेंट्स भी हमारे वो ट्रेवल करते थे तो वो कहते थे बातें भी बिल्कुल अजीब है, ये नई बातें हैं ये। मैंने कहा आप बताओ, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, इस पर ही हम चर्चा कर लेते हैं अभी खड़े खड़े। हम थोड़ा भी समझाते थे उनको, कहते बात तो राइट है, अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो कुत्ते बिल्ले इसमें और एक दूसरे को मार रहा है, चित्र बनाओ हमारा तो परमात्मा परमात्मा को मार रहा है। वो समझ जाते थे, इतना नशा था हम लोग उस वक्त, जो भी हम बोलेंगे वो उनको अच्छा लगता था, बात राइट है। इस प्रकार से करते क्लास होगी हमारी शुरू। फिर हम लौकिक गांव में भी गए ज्ञान सुनाने के लिए, अपने जिन लौकिक पिता ने हमको भक्ति सिखाई थी उनको बताने के लिए, उनके संस्कार भी अच्छे थे तो उनको हमने सबको ज्ञान सुना दिया कि आत्मा यह है, परमात्मा यह है, पवित्रता को धारण करना है, ब्रह्मचर्य को पालन करना है, कोई छुपाया नहीं, बता दिया। और जब राम है तो रावण नहीं, कृष्ण है तो कंस नहीं, ऐसी ऐसी बातें वो आश्चर्य कहें इसको कहां से मिली है। तो हमारे लौकिक फादर के उन्होंने भक्ति की थी, बड़ा बाबा श्री कृष्ण के बहुत भगत थे, वो कहते बातें आपकी ठीक है, लगती जचती हैं, लेकिन अगर आपका बाबा हमें कुछ दिखा दे, दिखा मैंने कोई साक्षात्कार करा दे, तब मैं मानूंगा है ये राज बात है। हम जब होते थे उन दिनों में दो बार भोग लगता था, एक लगता था गुरुवार को, एक लगता था इतवार को, सब। और वैसे तो भोग कभी जन्मदिन के भी कुछ लोग लगता ही रहता था। एक हमारी ध्यानी दादी थी अम्बाला में, वो आती थी हमारे पटियाला में भोग लगाने के लिए, खास आती थी, वो ऐसे हाथ करेंगी, कभी हमको फल देंगी, कभी किसी को फूल देंगी। मैंने मुझे देख देख के लगता था भी कैसे क्या होता, हमें समझ नहीं आती थी। तो मैं कहता था चलो बाबा, फिर मुरली में कहते ध्यान कोई ऐसी बात ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, हम कहते बाबा तो ध्यान पर कोई वैल्यू देते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था भी ये क्या है ये, क्योंकि हम तो साइंस पढ़े हुए थे, कहते व्हाट इज दिस, चार हैं वहां बैठे ही हैं ऊपर से कैसे संदेश आ रहा है, क्या है। तो थोड़ा सा क्या था, हमने कहा मुझे इसमें कुछ निश्चय नहीं है, है या क्या है, मुझे इसमें क्या लेना है, लेकिन जो डीप उसका निश्चय हो भाई वो नहीं था, हम बताया आप। तो हमने लोग पिताजी से कहा हमें तो खुद अगर ध्यान, हम तो कोई ध्यान में गए नहीं, आप कैसे, मैं रिकमेंड कैसे कर सकता हूं। तो ठीक है, हम गुरुवार को सब बैठ करके भोग लगा रहे थे, तो मुझे वहां एक और कैसे बाबा ने निश्चय कराया, हमारे लोग के पिताजी उठ के खड़े हो गए, तो भक्ति बहुत उन्होंने की थी, बोले बहुत थे, वो गांव के नंबरदार या वो सरपंच थे, उठ करके किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ऐसे पकड़ने की कोशिश। मैं बड़ा खुश हो रहा हूं भी कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ना कुछ बाबा दिखा रहा है इनको। और कुछ समय के बाद फिर वो जैसे नीचे आए, बहुत उदास थे। मैंने कहा क्या बात है, कहा मैं कहीं ऊपर गया, मुझे छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण बहुत सुंदर, अति सुंदर मुझे देखने में आया, मैं उसको पकड़ता हूं तो मैं यहां जाता हूं तो वहां चला जाता है, वहां जाता हूं तो वहां चला जाता है, मेरे हाथ नहीं लगा सका, छोटे बच्चे को भी मेरे हाथ में आए नहीं। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ, फिर कहा फिर आपके बाबा जो है, उनको फोटो तो देखी थी जहां त्रिमूर्ति में, कि वो सामने आए, उन्होंने मेरे से वायदा कि अगर तुम सब धारणाओं को धारण करोगे, ज्ञान पर निश्चय करोगे, तो बच्चा आपकी गोद में आएगा श्री कृष्ण। मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने जो धारणा छोटी मोटी थी थे तो बुजुर्ग की शुरू कर दी। और फिर हम अगले गुरुवार को हम छुट्टियां थी, हम वहां पर गए हुए थे, फिर भोग में बैठे, भोग लगाया, फिर उठ के खड़े हो गए, ना उसने कभी बाबा को देखा, ना किसी दादी दीदी को देखा, ना किसी बड़ी बहन को देखा, हम बैठे हैं तब। उठ करके खड़े हो गए, फिर वो श्री कृष्ण को पकड़ने लगे। फिर श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, उनके बड़े आंसू आए, बहुत वो खुश हुए, अतीन्द्र सुख की प्राप्ति उनकी, उनकी मनो इच्छा पूर्ण होगी उनकी। तो हम भी बड़े खुश हुए, चले हमने नहीं देखा, हमारे लोग एक फादर ने देखा तो हमको भी निश्चय करा दिया कि हाँ ये ध्यान का पाठ भी बहुत बड़ी बात है। सारा जो यज्ञ की स्थापना हुई है, आप हिस्ट्री सुनेंगे, ये ध्यान के पाठ से बहुत कुछ स्थापना हुई है, बहुत जो सारे रिवील हुए हैं यानी जो रहस्य, वो ध्यान के पाठ से शिव बाबा ने बहुत संदेशों द्वारा रिवील किए। तो बहुत बड़ा पार्ट है यज्ञ की स्थापना में। तो हम भी बड़े खुश हो गए, मैंने कहा देखो यहाँ पर कोई किसी का जादू नहीं, किसी का कुछ नहीं, देखो हमारे ये अपने आप ही ध्यान में जा रहे हैं, सारा उनको अनुभूति हो रही, हम भी बड़े, हमें और हमारा निश्चय में और चार चांद लगा दिए। इस प्रकार से इसको देख करके हमारे और सब जो फैमिली मेंबर्स वो भी ज्ञान में आ गए। तो इस वक्त हमारी, हम जब ज्ञान में चलने लगे, माता पिता तीन चार भाई हैं वो बहन सब ज्ञान में चल रहे हैं, कोई चले गए शरीर छोड़कर, कोई जिंदा है, लेकिन सारे अभी भी ज्ञान में चल रहे हैं और ईश्वरीय सेवा में सारे समर्पण टाइप में ही वास्तव में है। तो इस बात से बड़ा, जो बाबा ने कहा था अपने लौकिक फैमिली की सेवा करो, तो हम वो भी सेवा करते। इस प्रकार से चलते चलते भले बाबा हमने इंजीनियरिंग पास की, तो हमने उसके बाबा ने कहा था इंजीनियरिंग तुम्हारी काम नहीं आएगी, तो हम लौकिक माता पिता के साथ और हम बाबा से, बाबा मम्मा से मिलने के लिए कहाँ आए, ये मधुबन में आए। बीच में भी कई दो तीन चार दफा आए थे, उन दोनों में ज्यादा कोई मधुबन में ज्यादा आने जाने की बात नहीं होती थी, सेवक जो सेंटर ऑफ जो सर्विस था मधुबन नहीं था, सेंटर ऑफ सर्विस दिल्ली कलकत्ता नहीं, दिल्ली बॉम्बे इस प्रकार की कानपुर ऐसे होते थे। तो वहां हम बाबा मामा के पास है, बताया इंजीनियरिंग डिग्री हमारी पास हो गई, तो बाबा ने कहा था बच्चे मैंने तो कहा था कि तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम नहीं आएगी, तब मैंने क्या करना है मुझे, तो बाबा ने फिर हमें भ्राता दिल्ली भेज दिया, भ्राता जगदीश जी के पास। तो हम तो इंजीनियरिंग पढ़े होते सिविल इंजीनियर, और जगदीश जी के पास जो थी वो भ्राता, आप जानते होंगे कभी मिले होंगे या देखा होगा या आपने सुना होगा, जो हमारे इस संस्था के चीफ स्पोक्समैन और चीफ एडिटर थे हमारे, जिन्होंने सारा लिटरेचर लिखा, उनकी बहुत बड़ी कहानी है। तो हमें वहां भेज दिया गया, हमें ट्रेनिंग ली, भ्राता जी के साथ कई साल रहने का मौका मिला। हम वो भी कहते थे, मैं भी समझता था क्या हम, हमारी लाइन तो कोई लिटरेचर है नहीं, हमारी लाइन तो कंस्ट्रक्शन है। तो उन वो भी कहते थे कोई हो सकता है कोई बहुत बड़ा काम बाबा ने कराना हो, तो ये इसलिए हमने ट्रेनिंग लेते रहे। काफी दिन उनके साथ रहने का मौका मिला। तब उन दोनों में क्या था, वो एग्जीबिशन इन्वेंट हुई थी बॉम्बे में, अब याद नहीं मेरे सन क्या था, उस एग्जीबिशन निकली थी बाबा के दोनों में, 65 था 64 था ऐसा कुछ था। तो हमने एक सीढ़ी का चित्र बनवा करके दिल्ली से बड़ा सुंदर बना करके प्लास्टिक लगा करके 6x4 का बाबा को भेजा। वहां से हम रजौरी गार्डन में रहते थे, उन दोनों में दादा विश्वशोर और दादी प्रकाशमणि जी वहां आए हुए थे, उनके द्वारा भेजा। तो बाबा तो चाहते थे कोई काम होना चाहिए, तो बाबा को चित्र बहुत अच्छा लगा। बस उस दिन के बाद बाबा मुझको पत्र लिखने लगे, अब नहीं मुरली में आता बच्चे ये करेक्शन करो, ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे। तो जो बाबा पत्र लिखते थे वो मुरली में भी वो सुनाते थे, पत्र आते थे। तो हम इस प्रकार से चित्रों की सेवा में बिजी हो गए, सीढ़ियां बहुत सीढ़ी बनाई, जगह जगह बाबा कहते यहां भेजो वहां भेजो। फिर धीरे धीरे क्या थे, जो चित्र बनते गए, नए नए चित्र निकलते गए, तो एक स्टूडियो बनाया वहां पर दिल्ली में, जिसमें 3-4 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, तो एक चित्रशाला बन गई वहां पर। बड़ी दीदी ने वो चित्रशाला स्थापन की कृष्ण नगर में, और वहां पर आर्टिस्ट थे दिन, उन दिनों में हर एक चीज हाथ से बनती थी, अभी तो ना कंप्यूटर से गया और फ्लैक्स बन गया और फटाफट चित्र बन जाते हैं, वो तो एक एक चीज हाथ से बनाई जाती थी, उन दिनों में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, एक एक नाक मुंह कान सब सीढ़ी सब बातें जो थी वो हाथ से बनाते थे, आर्टिस्ट बनाते थे, ऑयल पेंटिंग या वाटर पेंटिंग होती थी। तो हम 20 चित्रों का एक सेट बनवा करके बाबा के पास उनको दिखाने के लिए मधुबन में आए, फर्स्ट टाइम हम ये दिखाने के लिए। तो आप जानते हैं ये हिस्ट्री हाल बन गया था तब, हमने वो चित्र रख दिए। तब दीदी और बाबा वो देखने के लिए आए। सारा उनको देखने के बाद कुछ करेक्शन दी, वो दिया, अपनी पहली अटेम्प्ट थी, अच्छा लगा बाबा को। मैं क्या बस छोटा सा काम किया ये, तो बाबा के कैसे बाबा उमंग उस शाम में लाते हैं। तो बाबा हमको बुलाया अपने कमरे में, अभी आप जाते हैं वो एक संदली है, बाबा की पलंग चारपाई है और हम नीचे बैठने लगे। बाबा ने कहा बच्चे ने नहीं, मेरे साथ बैठो। साथ बिठाया। मैं तो संकोच कर रहा था साथ कैसे बैठूं, बाबा का और मैं छोटा सा बच्चा अभी थोड़े समय से चल रहा था। बाबा कहा नहीं मेरे साथ बैठो। तो बाबा के महावाक्य थे, बहुत सुंदर महावाक्य, बड़े वैल्यूएबल, जिससे बहुत सेवा हुई। बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां है, हाँ हम भी बाबा का, जो बाप के बच्चे यहां वारिस हैं तो वहां भी वारिस बनेंगे। तो ये महावाक्य जो छोटे से काम हम कितना क्या था, बाबा चाहे तो किसी को टच करिए क्या से क्या बनवा दे, कितनी बड़ी। लेकिन हम वो थोड़ी सी अटेम्प्ट की थी तो बाबा को अच्छी लगी। तो बाबा के ये महावाक्य बहुत बहुत उमंग उत्साह दिलाने वाले थे। तो हम तो बड़े खुश हुए, बाबा ने इतना वरदान दे दिया, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, और यहां भी अगर संभालेंगे तो वहां भी संभालेंगे। यानी ये क्या है, हमारा ज्ञान अमृत भवन क्या है, बाबा का हमारा थोड़ा है, उसकी गद्दी है ना, हम बैठे उसको संभाल रहे हैं, तो यहां पर संभालेंगे तो वहां भी संभालेंगे। आप भी जो सेवा टीचर्स हैं, कोई भी है, बाबा के कारोबार में लगे हुए हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, पर कुछ भी कार्य में लगते हैं, बाबा की है, मदद करते हैं, यहां मदद करेंगे तो वहां पाएंगे। तो इतना ऐसे हम बताएं आपको, जाकर के कितने सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, हम बताएं आपको। बाबा कहते बच्चे यहां भेज दो, वहां भेज दो, रोज पत्र आते, बच्चे कलकत्ता भेज दो, कभी अम्बाम्बे भेज दो, कभी माम भेज दो। उसके बाद सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, हाथ से बनवाए चित्र हमने। फिर म्यूजियम बने, बड़े बड़े म्यूजियम बने सब जगह, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, जहां जहां म्यूजियम बनते थे हम बाबा कहते ये चित्र बना दो। आर्टिस्ट हमने एम्प्लॉय किए हुए थे, उनको चित्र बनवा के लगवाते थे, उनकी वो डेकोरेशन करा। अब तो बहुत सिंपल हो गया, उस बहुत डिफिकल्ट था, एक एक चीज हाथ से बनती थी। ये कार्य हुआ, मेले बने, फिर फेयर, स्पिरिचुअल फेयर बने। इस प्रकार से बहुत जो है उस छोर, एक बाबा ने महावाक्य उच्चारण करे बच्चे, कितना उमंग उत्साह भर दिया बच्चों में, बात पूछी। तो सेवा करते रहिए, बाप के मददगार बन गए हम। एक और बात सुना, देखो ये हमारा कोई भी किसी में भी हम छोटा सा गुण भी देखते हैं ना, अवगुण भी हो सकते हैं, गुण भी है, उस गुण को अगर मैग्नीफाई हम कर देते हैं अपने साथी सहयोगी, अपने नीचे काम करने वाले को, उसको बहुत उमंग उत्साह आ जाता है। तो ये हमने इस प्रकार से वो सेवा करते रहे। एक मैं बात बताता हूं, जब हम फर्स्ट टाइम एक कुछ समय पहले जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते तो एक दफा हम बाबा से मिलने के लिए आए। तो बाबा उस वक्त 80 इयर्स ओल्ड थे, 80 साल की उम्र थी बाबा, मैं आया हूँ 80 साल की उम्र थी। तो हमने बाबा को क्या देखा, एक वंडरफुल दृश्य देखा। उस समय उस एज में बाबा, अभी जो शांति स्तंभ का मैदान है ना, अभी शांति स्तंभ है, वहां एक मैदान था, वो नहीं बना हुआ था, हिस्ट्री हॉल भी नहीं था और कोई बिल्डिंग वहां पर नहीं, एक प्लेन ग्राउंड था। वहां पर बाबा क्रिकेट खेल रहे थे, हमारे दादा विश्वरतन दादा उनको बाल फेंकते थे और बाबा उसको उठाते, बच्चे भी सब खड़े थे, बड़ा रिमझिम, बड़ा खुश हो रहे थे सब। तो मैंने उन बाबा का फोटो लेना शुरू किया। हम बताएं आपको, बाबा का हमने फोटो लेना शुरू किया तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने मना कर दिया। तो मैंने कहा क्यों बाबा, क्या बात है। बाबा ने फिर महावाक्य उच्चारण किया, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं, ये कौन कह रहा है बोलो, मेरा फोटो नहीं आया, कौन कह रहा है ये, शिव बाबा का, उसका फोटो तो निकाल नहीं सकते, वो तो ज्योति बिंदु आती सूक्ष्म है, फोटो उसका आता नहीं है। और फिर कहा बच्चे बाबा इसका ये शरीर तो किसी काम का नहीं, क्यों फोटो लेते। मतलब कहने का क्या है कि बाबा कभी भी स्थूल इन बातों में नहीं परे रहते थे, इस फोटो ये इनसे उपराम थे ना। बाबा कभी अपनी महिमा करते थे, हम महिमा सुनते थे कभी। हम कभी भी हम जब क्लास में होते थे, एक हमारे कवि होते थे वहां के, ये दिल्ली के, वो कविता पढ़ते थे कभी आकर के, जब बाबा साकार ब्रह्मा की महिमा शुरू करते थे कहता चुप बस करो, नहीं सुनते थे। बाबा को न मान चाहिए, न मर्तबा, न महिमा, न ये बातें, इनसे बिल्कुल न्यारे थे। वो अपने को छुपाकर भी शिव बाबा को आगे करते थे, अपने को छुपाते थे। हमेशा कहते थे याद करना तो उसको करो। कोई माता बहन या भाई जब बाबा से मिलने जाते थे, बाबा कहते था किससे मिल रहे हो, अगर उसको याद करके नहीं आओगे तो ठीक नहीं है। बाबा और शब्द बोलते थे लेकिन वो ठीक नहीं, हमेशा कहते थे उस मेरे द्वारा भी उसको याद करके मिलो। यानी बाबा निराकारी, हमेशा आप देखो उनकी हिस्ट्री देखेंगे, वो भी खुद लिखते थे मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ऐसा जो सोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, हर आत्मा भी आत्म का सोल कॉन्शियस उन्होंने बहुत अभ्यास किया। हम कहते हैं ना हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, कहते ना हमारा क्या लक्ष्य है इस विश्वविद्यालय का, चित्र सामने आए क्या बनना चाहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, या कुछ भी उल्टा भी हो सकता है, नारी से नारायण भी, वो नारी से वो पद पा सकता है। हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद प्राप्त करना, वो तो फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट क्या बनना हम, यानी प्रेजेंट तो हमें जो उस बनने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे हमारे बाबा मामा बने वैसा हमको बनना पड़ेगा, जैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया हमको भी वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप देखो बाबा मामा ने क्या पुरुषार्थ किया, विचार करने की बात है। और हम कहते हैं हम बाप समान बने, हम बाबा मामा समान बने, हम चाहते हैं बाप समान बनना, जस्ट लाइक गॉड, जस्ट लाइक ब्रह्मा बाबा, बहुत बड़ी बात है। एडम आदम कितना ऊंचे है, जिसके तन में शिव बाबा आया, जिसको सारे धर्मों में उसकी यादगार है, एडम कहते हैं, आदम कहते हैं, या मैंने हम ब्रह्मा कहते हैं, सब जगह याद, एक शिव बाबा की, इन सब धर्मों में सब यादगार है। तो हम वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन हम सोचे हम हैं क्या, अभी हम कहां हैं, कितना गैप है ना, गैप क्या नहीं है, बन गए हम, गैप है ना, बहुत बहुत बड़ा फासला है, तो कैसे बनेंगे ये देख, हम बने कैसे, देखिए सब बाबा क्या बन गए, कर्मातीत बन गए, फरिश्ता बन गए, एक सेकंड से उड़ गए, देखा आपने, उन्होंने 8 बजे तक, रात्रि 8 बजे तक, 7 बजे तक मुरली चल रही थी, ज्ञान उनके मुख से निकल रहा था, और कुछ समय बाद अंत तक ज्ञान सुनाते रहे, वो उनके मुख से ज्ञान टपकता रहा, ज्ञान के सागर थे, और एकदम चले गए, शरीर से न्यारे हो गए, फरिश्ता बन गए। कैसे बने फरिश्ता, ऐसा ना एक दिन में बन गए, 32 साल तक उन्होंने भी पुरुषार्थ किया। फरिश्ता बनने की पहली स्टेज क्या है, हमने बनना है कर्मातीत बनना है, बाप समान कर्मातीत, यानी कोई स्वयं बाबा के और कुछ भी याद ना आए, ये हमारा पुरुषार्थ है, अंत में स्वयं बाबा के कुछ भी याद ना आए, मैं और मेरा बाबा। तो फरिश्ता बने, कैसे बने फरिश्ता, कर्मातीत बने, पहली स्टेज क्या है कर्मातीत बनने की, पहली स्टेज कर्मातीत, आप सोचो मैं कहां तक पहुंचा हूं, पहली स्टेज है कर्मातीत बनने की, विकर्मा जीत, बाबा मुरली में साफ कहते हैं बच्चे, तब कहते थे, अब भी मुरली राइज करते हैं बच्चे, कोई भी ब्राह्मण बन करके कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। ये देख लो, अगर अब भी कोई भी कर्म होता है, हम गुस्सा करते हैं, हमारे में और कोई भावना आती है, उल्टे कर्म होते हैं, तो मानो हम नीचे जा रहे हैं, विकर्म हमारे, हम ब्राह्मणों की डायरी से बुद्धि से खत्म, नो विकर्म। पहली स्टेज है क्या, विकर्मा जीत। बाबा भी कहते थे बच्चे अगर मन में, पहले शुरू में मन में अगर कोई विकल्प पाते कोई हर्जा नहीं, तब हम नए नए आए थे, आप भी नए नए आए थे, परंतु विकर्म कर्म में मत आओ, पहली स्टेज है विकर्मा जीत, और दूसरी विकर्मा जीत के बाद वो स्टेज पिछली होगी। अब ब्राह्मणों की डिक्शनरी में विकर्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, है तो बहुत बड़ी कमी है ये, अगर विकर्म अब भी होते हैं तो। तो विकर्माजीत, और दूसरी स्टेज है विकल्पाजीत, नो विकल्प, समझे, विकल्प माने बुरा संकल्प, अशुद्ध संकल्प। अब बाबा कहते हैं विकल्प नहीं, विकल्पाजीत चाहिए, सेकेंड स्टेज। तो विचार करो अब कहां पहुंचे हुए हैं, नो विकर्म नो विकल्प, ठीक है, नहीं होगा विकल्प, मैं समझता हूं। तभी बाबा को निश्चय है, बाबा को फेत है, मेरे ब्राह्मणों में अब विकल्प नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेज क्या है, नो व्यर्थ। तो बाबा यहां पहुंचे हैं, विकर्म तो पास की बात होगी, विकल्प भी खत्म हो गए, अब बाबा कहते हैं नो व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं चाहिए इस वक्त। व्यर्थ हम पहले क्या समझते थे पता है, पहले हम जब मुरली सुनते थे अव्यक्त बाबा व्यर्थ के बारे में कहते थे, ये क्यों, ये क्या, ये कब, ये कैसे, ये कौन, ये जो क्यों क्यों आता है ना, हम समझते यही व्यर्थ है। नहीं, अभी दादिया कहती नहीं, व्यर्थ मीन अभी यहां बैठे हैं, अभी आप कोई बाहर का सोचते हैं या घर का ध्यान आ गया तो ये क्या हुआ, इसे भी ये भी व्यर्थ है। जे बाबा कहते इतना बड़ा पुरुषार्थ है, जिस समय जो संकल्प चाहिए वही है, यह है ठीक। अगर और संकल्प आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वो व्यर्थ है, टू मच संकल्प भी व्यर्थ है। तो बाबा कहते हैं विकर्माजीत, विकल्प आतीत और व्यर्थ आतीत, नो व्यर्थ, अभी व्यर्थ भी नहीं चाहिए। फिर और उसके बाद क्या है, व्यर्थ के बाद नो साधारण संकल्प भी नहीं चाहिए। हमारे बाबा में कभी साधारणता नहीं थी, क्या थे, उनका कर्म, उनका संकल्प, उनकी वाचा, उनका कोई भी होता था, सब विशेष था, साधारण नहीं था। यानी हमें साधारण से भी परे जाना है, साधारण अतीत बनना है, उसे कहते हैं फरिश्ता। हर संकल्प हमारा विशेष हो, समर्थ हो, उसे समर्थ कहते हैं। यानी अब वो विकर्म तो छोड़ो, विकल्प भी छोड़ो, व्यर्थ भी खत्म, अब हमारा जो हर संकल्प समर्थ हो, विशेष हो, कुछ लाभदायक हो, उसमें पावर आने वाली हो, व्यर्थ ना हो, तो ये अब पुरुषार्थ। अगर हम चाहते हैं बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, मम्मा जैसा बनना, इतना ऊंचा बनना चाहते हैं, तो हमारा कोई भी संकल्प, संकल्पों पर ध्यान देना है। यानी हम पहले कहते हैं जैसा कहा जाता है, एज यू थिंक सो यू विल बिकम, हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। हम कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, यानी कि पहले बोलो फिर सोचो, फिर कहा थिंक बिफोर यू एक्ट, करने से पहले सोचो। तो अब हमको करने से और बोलने से पहले संकल्प पर ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूं। अभी हमारी एक वो फोल्डर निकला है, दादी जानकी जी निकलवाती है, अपने विचारों पर पुनर्विचार करो, आप सोच क्या रहे हैं, हमारा संकल्प कहां जा रहा है, इन बातों पर ध्यान देना है। अगर हम चाहते हैं बाप समान बनना, वो तो हमें अपने थॉट्स पर, अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बाबा ने ध्यान दिया, बाबा का हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म विशेष था, असाधारण था। जिसको देखते थे बाबा वो उड़ जाएगा, वो खुश हो जाएगा, किसी पर हाथ रखते थे वो बड़ा फूला नहीं समझाएगा। हर बात में बाबा जो थे बाप समान बन गए। हम कहते हैं ये कहा जाता है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, खुदा तो नहीं है, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है, उसमें नूर था शिव बाबा का। हम कई दफा देखते थे, जब भी कोई हर जितने है ना, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सब जो शिव बाबा के गुण थे वो सारे गुण उन्होंने अपने अंदर समा लिए थे। कोई उनसे ज्ञान की बात देखो, अंत तक ज्ञान सुनाते थे। हमें कई दफा बाबा के सामने होते थे, एक दफा बाबा दिल्ली में थे, वो मेजर एक कोठी में आए, कितना जिन जिन से मिलाते थे, फिर वो चक्कर का ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनके मुख से निकल रहा है ज्ञान, ज्ञान के सागर थे, को प्यार के सागर थे। जब कोई उनसे मिलने जाएगा ना, ایسا مل کے آئے گا جو کہے گا وہ سب سے زیادہ بابا مجھے ہی پیار کرتا ہے شاید. ایسا وہ بولتا تھا, ہم بھی دیکھتے تھے. سبھی سے بابا کا پیار کا ساگر تھا وہ. شانتی, اب ساتھ بیٹھیں گے شانتی کی انبھوتی ہوگی, شانی کی شانتی کی وائبریشن آتی تھی. یعنی جو شیو بابا میں گن تھے وہ برہما بابا نے اپنے میں دھارن کر لیے, باپ سمان بن گئے. تو ہم کو بھی ایسا بننا ہے, باپ سمان. جو باپ کے گن ہیں ہم بچوں کے گن ہونے چاہیے. دوسرا, بابا نے کیا یہ بھی دیکھا بچوں کی بہت پالنا کی. ہم یہ ابھی سمجھتے ہیں, اس وقت سمجھتے تھے کہ بابا نے ہم کو ایسے پالا جیسے ایک لوکک ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. ہم بتائیں آپ, ہر بات کا خیال رکھا. اگر دان درد ہوگا کہے گا بولی دادی ان کو حلوہ کھلاؤ. اب بتاؤ بابا کو کیا درکار پڑی ہے. میں ایک اور مثال, ایک بات کہتا ہوں جس کو سوچ کر کے میری آنکھیں بھر جاتی ہیں. ایک بار ہماری لوکک سسٹر, وہ بھی گیان میں چلتی ہے, تو وہ جب میٹرک پاس کی, مما اس نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گی. بابا نے, مما نے کہا نہیں ڈاکٹر یہ اسپرچل ڈاکٹر بنو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا مما کہتے, نشچے تو تھا ہی. تو وہ پڑھائی پڑھنے کے بعد آئے, اس کو سیوا کیندر پر بھیج دیا. وہ بیمار ہو گئے. تو بیمار ہو گئے, ان دنوں میں تو کوئی زیادہ وہ نہیں تھے, نہ ڈاکٹر تھے نہ کوئی وہ تھا. بیگری پارٹ بھی ایسے تھا, بیگری پارٹ نہیں کہیں, تو زیادہ کوئی وہ تھے بھی نہیں سادھن. تو اس نے کہا میں لوکک گھر میں جاتی ہوں تو جا کر کے اپنی ٹھیک ہو گئے پھر واپس آؤں گی. بابا نے کہا نہیں نہیں بچی تم میرے پاس آؤ. بابا نے اس کو بلایا اپنے یہاں مدھوبن میں, ایک ماس رکھا. اچھا کوئی زیادہ بڑی بیماری تھی. بابا ان کو روز سیب کاٹتے تھے, اس پر مکھن لگاتے تھے, بابا ان کو کھلاتے تھے اور وزن بھی کرتے تھے. اب بتائیے یہ ہے پالنا. ان تھوڑا چھوٹا پریوار تھا, چھوٹا پریوار سکھی پریوار بہت چھوٹا تھا. بابا ایک انڈیویجل کی بھی بہت وہ دیکھ بھال کرتے تھے. تو کہنے کا ٹھیک کر کے بھیج دیا. اب بتاؤ وہ جو بہن ہے, وہ جب بابا کی ایسی پالنا ان نے لی تو بابا پر نچھاور نہیں جائے گی تو کیا کرے. اب وہاں پر رہتے ہیں امرتسر میں, کتنے سیوا کیندر, کتنی سیوا, کتنا کچھ کر رہے ہیں. تو بابا, میں کہتا ہوں بابا نے ہم بچوں کی ایسی پالنا کی جیسے ایک لوکک باپ اپنے بچوں کی پالنا کرتا ہے. یہ بابا میں گن. اگر ہم چاہتے ہیں کہ باپ سمان بنے اور پورے بابا نے جو سمبندھ, ہم جو گن کیسے پرتکش ہوں گے برہما بابا دورا, سمبندھ بھی کیسے پرتکش ہوں گے ہمارا. وہ تو شیو نراکار ہے, ماتا ہے, پتا ہے, شکشک ہے, ستگرو ہے, سکھا ہے, سوامی ہے, سرجن ہے, ساجن ہے, بچہ ہے, محبوبہ ہے. یہ سارے جو نو سمبندھ ہیں یہ بھی باپا نے ہم بچوں کو بھاسنا دینے کی کوشش کی. ہم دیکھتے تھے, مجھے یاد ہے ایک بار بابا نے صبح صبح بابا دودھ پیتے تھے, پھیکا دودھ. او بچے آؤ میرے پاس آؤ, چمچ سے دودھ پلاتے تھے. ماں کا کہتے تھے دیکھو ماں ہوں نا میں, تم بچوں کی میں تمہیں دودھ پلا رہا ہوں. اس پرکار سے بابا نے ہم بچوں کی لوکک ریتی سے بھی ہر پرکار سے پالنا کی اور ایسا بھاسنا دی کہ ہمیں سب دیس ہے, دے کے سمبندوں کو بھلانے کی بھاسنا. اور بہت باتیں ہیں, سمے آپ ہونے والا ہے, تو اس سے اگر ہم باپ سمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نو وکرم, نو وکلپ, نو ویارت, اور ہمیشہ ہر سنکلپ ہمارا سمرتھ ہو اور پرشارتھ کرتے چلیں. جو بابا کہتے ہیں میں آتما ہوں, شدھ ہوں, شانت ہوں, شیتل ہوں, اسی کا بار بار ابھیاس ریوائز کرتے چلیں تو پاور بھی آئے گی, تو پیورٹی بھی آئے گی, تو ہم لکشمی نارائن سمان بن ہی جائیں گے, بن ہی جائیں گے. اوم شانتی, اوم شانتی.
وردان لٹانے जिसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने।